आज है 20 मई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में मिली करारी हार के बाद दिग्विजय सिंह ने पार्टी में की सर्जरी की सिफारिश। कांग्रेस में आत्मचिंतन के बाद उठने लगे हैं कदम उठाने की मांग।
कई बड़े वरिष्ठ नेता ये बात कह चुके हैं कि कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये कोई भी नहीं स्पष्ट कर पा रहा।
और आज विवेचना में रेहान फजल दौड़ा रहे हैं नजर राजीव गांधी के जीवन के अंतिम क्षणों पर।
वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे मैडम मैडम। उधर से सोनिया गांधी आया, उन्होंने बहुत सख्ती से जॉर्ज से पूछा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ। तो जॉर्ज बस नजरें झुकाए रहे, तो उन्होंने उनसे ये पूछा क्या वो जिंदा है।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारत के राज्यों में हालिया विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी को सर्जरी की जरूरत है। कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ एक राज्य पुडुचेरी में कांग्रेस जीत पाई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि अब इलाज का समय आ गया है। हालिया नतीजों के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए गए हैं। केरल में सीपीएम की बैठक में पिनराई विजयन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि सीपीएम पोलित ब्यूरो में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, लेकिन कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन इससे खुश नहीं है। अच्युतानंदन सीपीएम की बैठक बीच में छोड़कर चले गए, जिसमें पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भारत में अब तक का सर्वाधिक तापमान राजस्थान के फलौदी शहर में 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भयंकर गर्मी की वजह से भारत में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लरकाना में इससे भी अधिक 52 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में गर्मी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सैकड़ों राहत शिविर लगाए गए हैं। ग्रीस के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को लापता हुए इजिप्ट एयर के विमान का मलबा भूमध्य सागर में मिल गया है। पेरिस से काहिरा के लिए उड़े इस विमान में कुल 66 लोग सवार थे। लापता विमान का मलबा मिलने की जानकारी देते हुए मिस्र के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया,
تمكنت الطائرات المصرية والقطع البحرية المصرية المشاركة صباح اليوم
तलाशी अभियान में जुटे मिस्र के विमान और जहाजों को भूमध्य सागर में आज सुबह यात्रियों का कुछ सामान नजर आया। मलबे में विमान के कुछ टुकड़े भी नजर आए हैं। खोजने का काम अभी भी जारी है। मिस्र के सरकारी टेलीविजन पर एक एंकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित बगलान प्रांत में हुए एक बम धमाके में एक ही परिवार के 11 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। 2 अन्य लोग घायल हुए हैं और इस हमले की किसी गुट ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि बगलान प्रांत के गवर्नर ने बीबीसी को बताया है कि इस धमाके के पीछे तालिबान का हाथ है। इलाके में कुछ दिन पहले तालिबान लड़ाकों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसराइल के रक्षा मंत्री मोशे योलन ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि इसराइली समाज में चरमपंथ और नस्लवाद बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री मोशे योलन का यह बयान और इस्तीफा ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अपने गठबंधन में कट्टरवादी लिबरमैन को शामिल कर रहे हैं, जिन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है। मोशे योलन ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ वरिष्ठ राजनेता ऐसे हैं जो सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के लिए इसराइलियों में फूट डाल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में संदीप सोनी से सुना, विधानसभा चुनाव में पुदुचेरी के अलावा 4 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पार्टी में सर्जरी की सिफारिश की है। चुनाव के नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर कहा कि नतीजे दुर्भाग्यपूर्ण हैं, हमने बहुत विचार कर लिया, अब समय इलाज का आ गया है। कल तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से विनीत खरे।
कलाई विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विश्लेषण जारी है और ज्यादातर विश्लेषणों में एक बात जो लगभग एक जैसी है वो ये कि कांग्रेस की हालत खराब है। कहा जा रहा है कि राहुल और सोनिया गांधी को बात करने के बजाय बातों पर अमल करने की जरूरत है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। कर्नाटक, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड। ताज़ा हालात जारी रहे तो अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजों से भी कांग्रेस विश्लेषक बहुत उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की मात्र 6% जनसंख्या पर कांग्रेस का शासन बचा रह गया है। वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट में पत्रकार संदीपन शर्मा लिखते हैं, कांग्रेस को अगर बचाना है तो राहुल मुक्त करना होगा, क्योंकि वो पार्टी को कथित तौर पर अपने अधपके विचारों पाखंड से बर्बाद कर रहे हैं। संदीपन शर्मा कहते हैं कि सोनिया गांधी से एक मुख्य सवाल पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए क्या लेकर आते हैं? तजुर्बा नहीं, प्रतिभा नहीं, राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं, जीतने की योग्यता नहीं। क्या वो इंदिरा गांधी हैं जिनसे पार्टी कार्यकर्ता डरते थे या इज्जत करते थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू की तरह हैं जिनकी दूरदर्शिता और पांडित्य का आदर होता था? एक अन्य लेख में पत्रकार आकार पटेल पूछते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि कांग्रेस किन मुद्दों के लिए स्टैंड लेती है, और उनका विचार है कि गांधी परिवार ने भी ये सवाल नहीं पूछा है। इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस ने अपनी हारों से कोई सबक नहीं लिया है। जहां भाजपा नए इलाकों में फैल रही है, कांग्रेस सिकुड़ रही है। अखबार के मुताबिक जहां पहले भाजपा के बारे में कहा जाता था कि वो क्षेत्रीय दल से थोड़ी बड़ी पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्योंकि वो दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत से नदारद है, आज की तारीख में कांग्रेस कुछ क्षेत्रीय इलाकों तक सिमट कर रह गई है और वो राष्ट्रीय पार्टी से कम नजर आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस की गिरावट से क्षेत्रीय शक्तियों को मजबूती मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और राहुल गांधी के लिए इस्तीफा देने का ये उपयुक्त क्षण है। उधर कांग्रेस के भीतर भी आत्म मंथन के बाद अब कदम उठाने की बात की जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि आत्म मंथन बहुत हो गया, क्या पार्टी को बड़ी सर्जरी के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? सर्जरी से उनका क्या मतलब है? समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा,
Naturally, surgery has to be by the surgeon, that is my leader.
दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि सर्जरी पार्टी के सर्जनों द्वारा की जाएगी और वो उनके नेता सोनिया और राहुल गांधी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि आत्म मंथन का वक्त चला गया है, कार्रवाई का वक्त आ गया है। शशि थरूर ने कहा कि वर्ष 2014 से 2 साल बाद तक आत्म मंथन चल रहा है, लेकिन अब आत्म मंथन के नतीजों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। क्या कांग्रेस इन प्रस्तावों विचारों पर कदम उठाएगी? क्योंकि अब ऐसे कांग्रेस नेता भी सामने आने लगे हैं जो गांधी परिवार के बचाव में आ गए हैं और हार के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी को सोशल मीडिया और प्रचार की नई रणनीति बनाने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के भीतर आत्मचिंतन के बाद कदम उठाने की मांग उठने लगी है। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने ही वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से पूछा कि अब कांग्रेस को किस तरह के कदम उठाने चाहिए।
एक डेढ़ या दो साल में, जब से 2014 में हार हुई है कांग्रेस की, कई बड़े वरिष्ठ नेता ये बात कह चुके हैं कि कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये कोई भी नहीं स्पष्ट कर पा रहा। एक तरीका तो ये है कि राहुल गांधी को पूरा अध्यक्ष बना दिया जाए। अगर यही मांग है तो मुझे लगता नहीं कि ये मांग पूरी करने में कोई किसी से अनुमति लेने की जरूरत है। ये तो जिस दिन सोनिया जी चाहेंगी उस दिन वो मांग पूरी की जा सकती है, या राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि बताया ये जाता है कि राहुल गांधी खुद ही तैयार नहीं हुए। सन 2009 में जब ये मनमोहन सिंह की सरकार दूसरी बार UPA 2 आया, तब उन्होंने ये कहा था कि आप एक मंत्री पद ले लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, तब राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिया। 2011 में जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था और सोनिया जी सर्जरी के लिए, किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए अमेरिका गई, तब ये सोचा गया था कि शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया जाए या कुछ और बड़ा काम दे दिया जाए, ऐसा हो नहीं पाया।
आज मैं एक पढ़ रहा था एक एनालिसिस, जिस उसमें कहा गया था भाई कांग्रेस किस चीज के लिए स्टैंड करती है वही क्लियर नहीं है। अभी राहुल गांधी के कैपेसिटी पर ही क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाते हैं उनकी लीडरशिप पे?
जिस वक्त ये अहमद पटेल और शायद दिग्विजय सिंह जी या अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक समय पर ये सुझाव दिया था कि लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो राज्यों में सरकारें हैं उसमें हम अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलें, तो उसमें तरुण गोगोई का भी एक नाम था। काफी पुराने हो गए हैं और एक यंग चेहरा लाएं और उसमें इनका हेमंत विश्वा का नाम था, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए। उसका ही परिणाम है, कहा जाता है कि आज जो बीजेपी की विजय हुई है उसमें आधी जो कारण है वो ये है कि उनको पार्टी ने मौके पर मौका समय पर नहीं दिया मौका, और तरुण गोगोई अपने बेटे को आगे लाने के प्रयास में पार्टी का नुकसान कर बैठे। अब ये सही या गलत तो हमारे पास भी कोई जानकारी ऐसी नहीं है जो साबित करे कि ये बात सही है।
लेकिन प्रमोद जी, आप तो इतने साल से पत्रकारिता में हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या ये आप समझ पाए हैं?
नहीं, हम तो नहीं, जो भी समझ पाए हैं लोग, देखिए हो सकता है कि वो आदर्शवादी हों, लेकिन व्यावहारिक जमीन पर उनको जो सबसे बड़ी शिकायत है वो पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अरुणाचल में जो बगावत हुई, बताया जाता है कि 3 हफ्ते तक अरुणाचल के बागी विधायक दिल्ली में पड़े रहे और उनको बात करने का समय नहीं मिला, नेतृत्व ने उनको समय नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी और अल्टीमेटली उन्होंने बगावत की। अब ये आप आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तराखंड का एक पूर्व मुख्यमंत्री बगावत कर गया, 10 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। कल्पना करिए, 1/3 के आसपास आपकी पार्टी के लोग छोड़कर चले गए, किसी ने कोई चिंता नहीं की।
तो कांग्रेस पार्टी को है रणनीति बनाने की जरूरत। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात कर रहे थे विनीत खरे।
बीबीसी इंडिया पोल।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद आखिर क्या मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत के जुमले का? 2 और राज्य गंवाने के बाद क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत खो चुकी है? क्या कांग्रेस के सिमटने के साथ ही भारत की मध्यमार्गीय राजनीति हाशिए पर चली गई है? इस शनिवार यानी 21 तारीख को बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का मुद्दा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में 2 साल पूरे होने वाले हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने मदरसों में सुधार लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वे मुस्लिम युवाओं के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। उनकी सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन कुछ जाने माने मुस्लिम मजहबी नेताओं ने सरकार की ये पेशकश ठुकरा दी। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने भारतीय मुसलमानों की एक अहम संस्था जमीयत उस्लामे हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी से मुलाकात की और पूछा कि पिछले 2 सालों में मोदी ने मुसलमानों के लिए कौन से कदम उठाए हैं। तो उन्होंने कहा,
वो उसूली तौर पर बोलते भी हैं इस बात को, वे हम किसी के लिए नहीं करेंगे, किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो दावा भी करते हैं।
सबका साथ सबका विकास,
सबके साथ की बात करते हैं वो जरूर।
जो आम मुसलमान, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी देन यही है कि हम ये समझ रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तो फसादात होंगे, रायट्स होंगे, लेकिन उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है कि ऐसा नहीं हुआ पिछले 2 सालों में। ये एक बहुत बड़ी उनकी,
इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक ये एहसास था कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने आने के बाद इसको बहुत साफ तौर से कहा, मुल्क के अंदर कम लेकिन मुल्क से बाहर ज़्यादा, कि भारत का मुसलमान जो है वो भारतीय है, भारत के लिए जिया है, भारत के लिए मरेगा। तो मुझे उस समय लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा कि ये तो एक ठंडी हवा का झोंका है, खुदा करे कि ये हवा बाकी रहे।
जब 2014 चुनाव के ज़माने में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो मुसलमानों में एक तरह से खौफ था कि वो आएगी तो पता नहीं।
मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मुसलमान बताशा नहीं है कि पानी गिरेगा और मुसलमान बैठ जाएगा। मुसलमान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर वहाँ होता है जहाँ कमज़ोरी होती, और जहाँ वीकनेस ना हो, कमज़ोरी ना हो, होता क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए डिलीवर किए बगैर फ्री में वोट ले लेना चाहते।
लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी,
तो हम इनसे आज भी ये बात कहते हैं, आप डिलीवर कीजिए। बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए ठोस कुछ नहीं कर रही है, और 2 साल में किया भी नहीं है उसने। मेरा सवाल यह है कि 10 साल में मुसलमानों के लिए ठोस क्या किया गया? उन्होंने जो हमारे अपने हैं, उन्होंने जिनको हमारे वोट मिलते हैं अनकंडीशनल।
अब एक सरकार ऐसी आई है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप एक मौका उनको देने के लिए तैयार नहीं है?
देखिए, ये सवाल मुझसे करने के बजाय आपको उनसे करना चाहिए कि एक मौका वो लेने के लिए तैयार हैं।
वो तो कहते हैं कि हम
नहीं, कहने के में और उसमें फर्क होता है। देखिए, उनकी सरकार है, हमारे पास इस वक्त आजमाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास करने के लिए सब कुछ है। ملک میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دوسرے کا سمجھنا یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے علاوہ ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہی میں مسلمان ہی کی بات، یہ مسلمان کا ڈیلیما ہے کہ وہ کہتے ہیں تم ہمارے علاوہ ہمیں نہیں دو گے تو کس کو دو گے۔
وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کا جو ایشو ہے اس پہ آپ ہمیں ایک ہمیں دے دو، اس پہ بات کرو، اگر وہ آپ دے دیتے ہو تو ہم
بات کرنے کے لیے نہیں، وہ تو الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں دے دو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں 20 سال کا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے، آدھی کھائیں گے بھوکے سو جائیں گے لیکن بچیوں اور بچوں کی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔
تو یہ انیشیٹو کون لے گا؟ یہ 20 آپ،
یہ انیشیٹو جماعت، دیکھیے جماعت جو ہے اویئر کر سکتی ہے لوگوں کو،
اویئرنیس کی،
اویئرنیس کریٹ کر سکتی ہے، تو ہم ہر جگہ ہر موقع پہ کر رہے ہیں۔
اب مودی صاحب نے کہا ابھی کئی بار کہا ہے انہوں نے کہ مدرسوں میں جو ہے اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے۔
نہیں، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، بالکل منظور نہیں ہے، مجھے مودی صاحب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیا مودی صاحب بہت ہمدرد ہیں اور ہیں بھی، میں مانتا بھی ہوں، تو ان کو میرے لیے اسکول بنا دینے چاہیے، میرے علاقوں میں کالجز بنا دینے چاہیے، پروفیشنل کورسز کے بنا دینے چاہیے، میرے ہاں اسکل ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ
میرے مدرسے کو نہیں چھڑیں گے وہ۔
جمعیت علماء ہند کے مہا سچیو مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو نہ چھیڑا جائے۔ ان سے بات کر رہے تھے زبیر احمد۔ آپ سن رہے ہیں دن بھر سشیلا سنگھ کے ساتھ، اور اب سمے ہے ویویچنا کا۔ 25 سال پہلے بھارت کے پورو پردھان منتری راجیو گاندھی شری لنکا کے تمل پرتھکتا وادیوں کے آتم گھاتی حملے میں مارے گئے تھے۔ اس سمے ان کی آیو صرف 46 سال کی تھی۔ اس سمے راجیو گاندھی عام چناؤ کے انتم چرن میں تمل ناڈو کے شری پیرمبدور میں چناؤ پرچار کر رہے تھے۔ آج کی ویویچنا میں ریحان فضل نظر دوڑا رہے ہیں راجیو گاندھی کے جیون کے انتم کھڑوں پر۔
اپنی ہتیا سے کچھ ہی پہلے امریکہ کے راشٹرپتی جان کینیڈی نے کہا تھا کہ اگر کوئی امریکہ کے راشٹرپتی کو مارنا چاہتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، بشرطے ہتھیارا یہ طے کر لے کہ مجھے مارنے کے بدلے وہ اپنا جیون دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ 21 مئی 1991 کی رات 10:21 پر شری پیرمبدور میں ایسا ہی ہوا۔ 30 سال کی ایک ناٹی کالی اور گٹھیلی لڑکی چندن کا ہار لے کر بھارت کے پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ ان کے پیر چھونے کے لیے جھکی، کانوں کو بہرا کر دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس سمے منچ پر راجیو کے سمان میں ایک گیت گایا جا رہا۔ وہاں سے مشکل سے 10 گز کی دوری پر گلف نیوز کی سمواداتا اور اس سمے ڈیکن کرونیکل کی بنگلور کی استھانیہ سمپادک نینا گوپال راجیو گاندھی کے سہیوگی سمن دوبے سے بات کر رہی تھی۔
2 منٹ بھی نہیں بات کیا اور وہ بم پھٹی میرے آنکھوں کے سامنے، اور میں وائپ تو کبھی نہیں پہنتی۔ اس دن رش میں میں نے ساڑی نکلا میری آنٹی کے کبڈ سے اور پہن کے آئی، اور میرا ساڑی کے اوپر آج تک یو نو اٹس سچ این ہاربل فیلنگ، ساری کے اوپر بلڈ تھا، کچھ اور تھا۔ دا فیکٹ دیٹ وی آل دیٹ وی سروائیوڈ آئی تھنک از اے مائنر مائنر میریکل، کیونکہ ہمارے سامنے جو بھی تھے وہ سب مر گئے تھے۔
گڈ ایوننگ، دا فارمر انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی ہیز بین اسیسینیٹڈ، ہی اینڈ ایٹ لیسٹ 14 ادر پیپل ور کلڈ بائی اے بم ایٹ این الیکشن ریلی ان دا ٹاؤن آف شری پیرمبدور آؤٹ سائڈ مدراس ان دا سدرن انڈین اسٹیٹ آف تمل ناڈو۔
بلاسٹ کا آواز تو بہت پہلے ایک پٹ 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 ایسے جیسے فائر کریکرز ہوتے تھے نا، ایسے لگا جیسے، پھر اس کے بعد ایک بڑا سا بھوش ہوا اور پھر پھٹا وہ۔ آئی ہیڈ جسٹ کورڈ گلف وار، میں تو کویت میں تھی جب امریکن ٹروپس تھے لبریٹ کر رہے تھے کویت، تو مجھے پتا تھا کہ یہ چھوٹا بام نہیں ہے، یہ بڑا بام ہے۔ تو میں آگے نکلی ٹوورڈز بام سائٹ اور پورا کپڑے، پیپل ور ان فلیمز، یو نو چیخ رہے تھے، یو نو اٹ واز کمپلیٹ میہم، کانٹ ڈسکرائب اٹ، یو نو اٹ واز لائک پینک۔ ہم کو پتا نہیں تھا نا کہ راجیو گاندھی مر گئے کہ نہیں مر گئے، کیا ہوا۔
اس حادثے کے ٹھیک 5.5 گھنٹے بعد بی بی سی کے وشو بھارتی کاریکرم کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی۔
کافی لوگوں سے دباؤ آیا تو میں آیا، مجھے لگا تھا کہ ایک ضرورت تھی، ایک ویکیوم سا بن گیا تھا۔ بیچ میں بہت کہا گیا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاریں گے تو بھاگ جائیں گے، کچھ لوگ کہتے تھے कि हारेंगे तो सरकार को फिर भी पकड़ सत्ता को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सब कहने वालों की बातें थी, इनमें सच्चाई बहुत कम थी।
समाचार आपने सुना कि राजीव गांधी नहीं रहे, एक अविश्वसनीय समाचार लगा जैसे कोई झूठ बोल रहा है। अभी परसों की बात है जब मतदान का पहला दिन था और राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की थी, लेकिन कल वे स्वयं किसी आतंकवादी की अनास्था का निशाना बन गए।
श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के तीन चोटी के नेता जी के मोपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पी के गुप्ता के पैरों पर गिर चुका था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में जी के मोपनार ने एक जगह लिखा,
लोग दौड़ने लगे, मेरे सामने क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर देना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया।
मोपनार से थोड़ी ही दूर पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी थी।
सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दे। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव।
वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गई, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव गांधी खड़े हुए थे।
मैं सामने 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 गई, जितना भी सामने जा सकती थी, और मैंने उसका बॉडी देखा, मैंने शूज देखा उनका और उनका हाथ देखा। वो एक गुच्ची वॉच पहनते थे और गुच्ची का वॉच मेरे मुंह के सामने था, जहां मैं बैठ के इंटरव्यू कर रही थी गाड़ी के अंदर। उसका हाथ मेरे बिल्कुल मुंह के सामने, वो हाथ मैंने देखा। और फिर ऑफकोर्स हमने मोपनार साहब को देखा, जयंती नटराजन को देखे, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत हादसा हुआ है। और मरे कि नहीं मरे ये नहीं पता था ना उस वक्त, तो बॉडी देखा मैंने। और फिर वेरी स्ट्रेंजली ये राजीव गांधी के ड्राइवर हमको पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुमको लेके जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। इसने कहा अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो आप निकले। तो ऐसा एनीवे हम थोड़ा देर निकले और कुछ एम्बुलेंस ऐसा एक गाड़ी आया और उनको लेके जाते वक्त हम फॉलो किए और एम्बुलेंस और निकल गए।
लगभग उसी समय राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी के घर में घुसे ही थे कि उनके टेलीफोन की घंटी बजी। सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले रशीद किदवई ने बीबीसी को बताया,
जब वो चाणक्यपुरी अपने घर पहुंचे तो उसी वक्त उनके पास फोन आया, कोई बहुत बुरी खबर है। तो वो फौरन वापस जो थे 10 जनपद पर आ गए। उस वक्त तक सोनिया गांधी को भी किसी ने खबर करी थी, तो उन्होंने उनसे इंटरकॉम पे फोन करके पूछा जॉर्ज से। तो जॉर्ज उस वक्त जो थे वो नलिनी चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम की वाइफ है और कांग्रेस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर रहे थे। सोनिया गांधी होल्ड करती रहीं, फ़ोन रखा। उसके बाद दूसरा फ़ोन आया जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, जो चेन्नई से आया था, और उसने एक तरीके से जॉर्ज को इस बात की कंफर्म कर दिया कि बम का धमाका हुआ है और वो अब जिंदा नहीं है। इस चीज़ को सुन के बिल्कुल जॉर्ज जो थे घबरा गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद वो दौड़ते हुए, क्योंकि 10 जनपद जो थोड़ा बड़ा एक उसमें बाहर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का रूम है और घर है जो थोड़ा दूर है, 10-20 उसके फासले पर है, तो जॉर्ज को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सोनिया गांधी ने नहीं सुना था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मैडम मैडम। इस बीच उनके पास भी फ़ोन आ चुका था, कुछ ख़ास बात नहीं पता चली। लोगों ने ऐसी फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। उधर से सोनिया गांधी आई और उन्होंने बहुत एक तरीके से सख्ती से जॉर्ज से पूछा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ। तो जॉर्ज कुछ बस नजरें झुकाए रहे, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि इज ही अलाइव, क्या वो जिंदा है। जॉर्ज की खामोशी जो थी उसने सोनिया गांधी को बिल्कुल बेकरार कर दिया और जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और बिल्कुल से कहते हैं ना अपना आपा खो बैठी। और वो खुद अस्थमे की मरीज है तो वो अस्थमा का भी उसी वक्त अटैक हुआ। प्रियंका गांधी जो सिर्फ 19 साल की लड़की, सो कुछ समझ में नहीं आया, वो दवाएं ढूंढती रही, दवाएं नहीं मिली, इनको पानी पिलाया गया, तो एक बहुत ही मतलब कोहराम मचा हुआ था।
राजीव की मौत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने बाकी चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया। 24 मई को उनकी अंत्येष्टि हुई जिसमें दुनिया के कई चोटी के नेता उपस्थित हुए।
This is the funeral of a leader who is not a political natural. Rajiv Gandhi lacked the ruthlessness of his mother and her cunning too. His elite upbringing meant that he didn't have the common touch. But those of us who had covered his final weeks of campaign had noticed one significant change.
BBC हिंदी के ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने इन शब्दों में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।
बात सन 40 के दशक की है जब भारत में नेहरू परिवार के त्याग और बलिदान की कथाओं के गीत गाए जाते थे। उस समय बिस्मिल इलाहाबादी ने फरमाया था, शम्मा महफिल देख ले, ये घर का घर परवाना है। जाहिर है कि उस समय मोतीलाल नेहरू, स्वरूप कुमारी नेहरू और कमला नेहरू के बलिदान और जवाहरलाल, विजयालक्ष्मी और इंदिरा प्रियदर्शनी की तपस्या की कहानियां उनके ध्यान में रही होंगी, मगर वह पंक्ति अपने अंक में एक दारुण भविष्यवाणी भी छिपाए हुए है, ये भला कौन सोच सकता था। पहले संजय, फिर इंदिरा और अब राजीव, देखते देखते उसी परिवार का घर का घर परवाना हो गया।
इस केस की जांच के लिए CRPF के IG डॉक्टर DR कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कुछ ही महीनों में इस हत्या के आरोप में LTT के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। डॉक्टर कार्तिकेयन ने BBC से बात करते हुए कहा,
फर्स्ट ब्रेक थ्रू वाज, यस यू कैन सी दोस 10 फोटोग्राफ्स ऑफ फ्रॉम खरीबाबूस कैमरा, बट देन देयर वर मेनी अदर लीड्स फॉलोड लेटर ऑन द टेलीफोन कॉल।
आप कह सकते हैं हमारी पहली सफलता थी हरी बाबू के कैमरे से उन 10 तस्वीरों का मिलना। हमने आम लोगों से सूचनाएं लेने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया और एक टोल फ्री नंबर भी दिया। हमारे पास कुल 3-4 हज़ार फोन कॉल आए। हर एक कॉल को गंभीरता से लिया गया। हमने चारों तरफ छापे मारने शुरू किए और जल्द ही हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। पहले दिन से ही मैं इस काम में बिना किसी आराम के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगा रहा। मैं रोज रात 2 बजे काम के बाद कुछ घंटे की नींद के लिए गेस्ट हाउस पहुंचता था। सारी जांच 3 महीने में पूरी हो गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगा। लेकिन हत्या की पहली वर्षगांठ से पहले हमने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी ने इच्छा प्रकट की कि वो नीना गोपाल से मिलना चाहती हैं।
जब मैं दुबई वापस गई, ये इंडियन एम्बेसी के लोग मुझे फोन करके कहा कि सोनिया जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं जून फर्स्ट वीक में वापस दिल्ली गई थी और उनसे मिला। It was a very emotional, very difficult meeting, I think, for both of us. क्योंकि बस एक ही बात वो सुनना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड का मूड कैसे था। What did he say? What were his last words? Because he basically died, I heard later, कि उसने he died with my name on his lips. वो तो जयंती नटराजन से कहा कि where is that Gulf News girl? Go get Nina. तो जयंती उससे मुड के मेरे पास आ रही थी और वो बॉम्ब फटा। वो मेरी हाथ पकड़ी और she just cried, tears were streaming down her face and she just said, tell me everything, tell me what he said, what was his mood, and I said he was like walking on air, he knew he was going to win, he was in such a good mood, kuch bhi ho he was willing to accept it, log dhakke mare usko, cheek pinch kare, kuch bhi ho, he was in such a high.
Indira Gandhi ke pradhan sachiv rahe PC Alexander ne apni kitab My Days with Indira Gandhi mein likha hai ki Indira Gandhi ki hatya ke kuch ghanton ke bhitar All India Medical Institute ke galiyare mein मैंने सोनिया गांधी को राजीव गांधी से लड़ते हुए देखा था। वो सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, किसी कीमत पर नहीं, वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले वो शब्द सही सिद्ध हुए थे। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आप रिहान फजल की विवेचना कल सुबह 8 बजे विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं, साथ ही bbchindi.com पर आप अपनी सुविधा अनुसार इसे सुन भी सकते हैं। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। तकनीकी सहयोग आज किया था राजेश चौहान ने। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त।